संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 26 जनवरी 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का इसराइल को गाजा में जनसंहारक कृत्य रोकने के लिए भरसक उपाय करने का निर्णय। बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार से दमनकारी प्रवृत्तियों को उलटने के लिए सुधार लागू करने की पुकार। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा महिलाओं को उनके मानवाधिकारों से वंचित किए जाने पर चिंता। UN महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने पूरी की 5 दिन की भारत यात्रा। और यमन में हूथी लड़ाकों ने अमेरिका व ब्रितानी पासपोर्ट धारक UN स्टाफ को दिया देश छोड़ने का आदेश। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे समाचार आपको हर दिन खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसराइल पर गाजा में जनसंहारक गतिविधियां चलाने के आरोपों के साथ दर्ज कराए गए मुकदमे में शुक्रवार को निर्णय सुनाया है। इसराइल ने शुरू से ही इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की अध्यक्ष जोआन डोनोग्यू ने द हेग स्थित पीस पैलेस में ये निर्णय सुनाते हुए कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को जनसंहार के कृत्यों से सुरक्षा का अधिकार हासिल है।
The state of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts.
इसराइल जनसंहार के अपराध की रोकथाम और इसके लिए दंड पर कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार गाजा में फिलिस्तीनियों के संबंध में इस संधि के अनुच्छेद 2 के दायरे में आने वाले तमाम कृत्यों को रोकने में अपनी शक्ति के अंतर्गत तमाम उपाय करेगा, विशेष रूप से समूह के सदस्यों की हत्याएं, समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक व मानसिक नुकसान पहुँचाने, समूह पर उसके पूर्ण या आंशिक हिस्से के वजूद के विनाश के लिए जानबूझकर नुकसानदेह परिस्थितियां थोपने और समूह के भीतर बच्चों के जन्मों को रोकने जैसे कृत्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्ष जोआन डोनोग्यू के शब्द। न्यायालय ने इसराइल से साथ ही युद्ध से तबाह गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की आपूर्ति की अनुमति देने का भी आह्वान किया है जिसकी अत्यधिक जरूरत है। न्यायालय के इस आदेश में उन तमाम बंधकों को तत्काल रिहा किए जाने की भी पुकार लगाई गई है जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल के दक्षिणी हिस्से में किए गए हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। आदेश में ये रेखांकित किया गया है कि न्यायालय गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से क्षेत्र में हो रही मानवीय त्रासदी के दायरे से पूरी तरह अवगत है। न्यायाधीश डोनोग्यू ने कहा कि ये अदालत जीवन की निरंतर हानि और मानवीय पीड़ा के बारे में गहराई से चिंतित है। इस बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN सहायता एजेंसी UNRWA के कुछ कर्मचारियों पर हमास के साथ संबंध होने के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बांग्लादेश में हाल ही में संसदीय चुनावों में जीत हासिल करने वाली सरकार से कथित दमनकारी प्रवृत्तियों को उलटने और संवाद बहाल करने के लिए सुधार लागू करने का आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस महीने के आरंभ में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद चौथी बार सरकार बनाई है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल ने इन चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि लगभग 25,000 विपक्षी नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को प्रताड़ित किया गया और उन्हें इलाज से वंचित रखा गया। पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मियों पर भी हमले किए गए। कुछ मतदाताओं पर कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने मतदान करने के लिए दबाव डाला था और ऐसा करने में विफल रहने पर हिंसा और सामाजिक सुरक्षा लाभों को खोने की धमकी दी गई थी। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सचेत किया कि इन आरोपों की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को पत्र लिखकर मानवाधिकार के हनन और उल्लंघन के बहुत से आरोपों की जांच कराए जाने का आग्रह किया। UN विशेषज्ञों का कहना है कि मानवाधिकारों की रक्षा करने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों को भी आश्वासन मिलेगा और दुनिया को स्पष्ट संदेश जाएगा कि देश की सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 की आखिरी तिमाही में सैकड़ों अफगान महिलाओं को उनका कामकाज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। सचिन गौड़ की एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मिशन की इस रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय फैक्ट्री में लगभग 400 महिला श्रमिकों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। एक अन्य बिजली संयंत्र में काम करने वाली 200 महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि कई महिलाओं को गर्भ निरोधक खरीदने के लिए गिरफ्तार किया गया और एक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में कार्यरत अविवाहित महिला कर्मचारियों को विवाह करने की हिदायत दी गई। ऐसा ना करने पर उनका रोजगार खत्म होने का जोखिम था। तालिबान अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि एक अविवाहित महिला के लिए बाहर काम करना अनुचित है। अनेक महिलाओं को बसों में यात्रा करने या काम पर जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि या तो वे अविवाहित थीं या फिर कोई तथाकथित पुरुष संरक्षक उनके साथ नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल और अन्य स्थानों पर उचित ढंग से हिजाब नहीं पहनने के लिए अनेक महिलाओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने 5 दिन की भारत यात्रा की है। उन्होंने 22 से 26 जनवरी तक की अपनी आधिकारिक यात्रा में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के अलावा अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। उनकी इस यात्रा के बारे में दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
यूएन महासभा अध्यक्ष ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। उन्होंने मंगलवार को राजस्थान स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों आमेर के किले और सिटी पैलेस को देखा। जयपुर में ही उन्होंने भारत का मशहूर जयपुर फुट बनाने वाली संस्था का भी दौरा किया जो विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दर पर कृत्रिम अंग प्रदान करती है। यूएन महासभा अध्यक्ष ने बुधवार को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपना नजरिया रखा।
The primary focus of my visit is to seek India's continued support. For my presidency's priorities towards peace, prosperity, progress and sustainability at the United Nations General Assembly.
यात्रा का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति, प्रगति, समृद्धि और सततता की प्राथमिकताओं के लिए भारत का निरंतर समर्थन प्राप्त करना है, लेकिन सबसे अहम भारत द्वारा उठाए गए रूपांतरकारी कदमों को सीधे तौर पर देखना है जो कि वैश्विक दक्षिण और उससे परे भी अन्य देशों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के शब्द। उन्होंने भारत स्थित यूएन कार्यालय में लैंगिक पहचान, शिक्षा व स्थिरता पर युवजन के साथ एक चर्चा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र युवजन के लिए एक नए विश्व की परिकल्पना करता है। यूएन महासभा अध्यक्ष ने राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। गुरुवार को उन्होंने वित्तीय शहर मुंबई का दौरा किया।
यमन में हूथी अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र व अन्य मानवीय सहायता एजेंसियों के अमेरिकी और ब्रितानी पासपोर्ट धारक स्टाफ को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने बुधवार को न्यूयॉर्क में हूथी अधिकारियों के आदेश की पुष्टि करते हुए संवाददाताओं से कहा कि ये मांग उन कानूनी शर्तों के विपरीत है जिनके तहत संयुक्त राष्ट्र और अन्य गैर सरकारी संगठन अपना काम करते हैं। प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने कहा कि किसी कर्मचारी की केवल राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को देश छोड़ने का कोई भी अनुरोध या आदेश संयुक्त राष्ट्र पर लागू कानूनी ढांचे के साथ मेल नहीं खाते हैं। गौरतलब है कि यमन में 2015 से पूर्ण युद्ध जारी है जिसमें हूथी लड़ाके देश की सरकार के बलों के साथ युद्धरत हैं और देश के अनेक क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी सना पर भी उनका नियंत्रण है। मोटे तौर पर यमन की सीमाओं के भीतर एक नाजुक युद्ध विराम लागू है, मगर हूथी लड़ाकों ने फिलिस्तीनी चरमपंथियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं। उन हमलों के जवाब में हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने दर्जनों हवाई हमले किए हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।